नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चीन के गांसू किंघई सीमा क्षेत्र में सोमवार देर रात आए भूकंप के बाद कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई जबकि 230 से अधिक घायल हो गए। मंगलवार को चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट ने यह जानकारी दी। यूरोपीय भू मध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी है। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। ईएमएससी ने कहा कि भूकंप 35 किलोमीटर की गहराई पर आया जिसका केंद्र गांसू की प्रांतीय राजधानी लांचू से 102 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में था। आधिकारिक रिपोर्टों में ये नहीं बताया गया है कि भूकंप के बाद कोई लापता व्यक्ति है या नहीं। आधिकारिक शिनहुआ समाचार एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र दो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के बीच सीमा से 5 किलोमीटर दूर था। बताया गया कि किंघई प्रांत के कई हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने इस्लामी संस्कृति और यूरोपियन सभ्यता में आपस में कोई मेल ना होने पर अपनी बातें रखी हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोल रही हैं कि वो अपने देश में शरीयत कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि इटली के अधिकतर इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से फंडिंग की जा रही है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को उठाने का मतलब इस्लाम के महत्व को कम करना नहीं है। इस मुद्दे का सिर्फ इतना मतलब है कि यूरोप में इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों से बहुत दूर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में लड़ाई रोकने का आह्वान करने वाले अरब देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर मंगलवार सुबह तक भी मतदान नहीं हुआ। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव पर वीटो करने से बचने के लिए बातचीत तेज कर दी है। परिषद ने सोमवार शाम 5 बजे कहा कि मतदान नहीं होगा और राजनयिकों ने कहा कि इजराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका को प्रस्ताव पर मतदान प्रक्रिया से दूर रहने या उनके पक्ष में वोट करने के लिए मानने के वास्ते बातचीत हो रही है। सदस्य देशों के लिए अहम मुद्दा ये है कि अत्यधिक आवश्यक सहायता अभियान कैसे लागू किया जाए। मानवाधिकारों की वकालत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को इजराइल पर गाजा में जानबूझकर भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। पोप ने सेम सेक्स मैरिज के लिए अपनी सहमति दे दी है। विभिन्न न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार पोप ने सेम सेक्स मैरिज को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। वेटिकन सिटी ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे दिया है। अब कैथोलिक पादरी सेम सेक्स मैरिज को अपना आशीर्वाद दे सकेंगे, बशर्ते ऐसी शादियां आमतौर पर चर्च में होने रिचुअल्स का हिस्सा ना हो। यूरोपीय संघ इस बात की जांच कर रहा है कि क्या एलन मस्क के ऑनलाइन मंच एक्स ने नए सख्त सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन किया है। ऑनलाइन सामग्री को कम भड़काऊ, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक बनाने से रोकने के वास्ते बनाए गए नियम के प्रभावी होने के बाद इस तरह की ये पहली कार्रवाई है। यूरोपीय आयुक्त थियरी ब्रेटन ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हमने डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत एक्स के खिलाफ औपचारिक उल्लंघन की कार्रवाई शुरू की। प्रवक्ता जोहान्स बहरके ने ब्रसेल्स में एक प्रेस वार्ता में कहा, आयोग अब कुछ संदिग्ध उल्लंघनों से संबंधित एक्स के सिस्टम और नीतियों की जांच करेगा। मिस्र में पिछले 9 वर्षों से राष्ट्रपति के पद पर काबिज अब्देल फतेह अल सीसी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर अगले 6 वर्षों के लिए एक बार फिर से शीर्ष पद पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। चुनाव अधिकारियों ने सोमवार को अल सीसी की जीत की घोषणा की। अल सीसी के अलावा 3 अन्य उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थे। नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी ने कहा कि अल सीसी ने 89.6% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। 6.70 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं में से 66.8% ने मतदान किया था। चुनाव आयोग के प्रमुख हेजम बदावी ने एक टेलीविजन समाचार में आधिकारिक परिणामों की घोषणा करते हुए कहा, इस बार मतदान प्रतिशत मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को तीसरी बार इस पद के लिए चुने जाने पर बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण कराने के लिए सोमवार को रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के सरकारी मीडिया को बताया, उन्होंने दस्तावेज उन्हें सौंपे हैं। पुतिन के समर्थकों ने शनिवार को औपचारिक रूप से उन्हें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग लेने के लिए नामांकित किया। रूसी चुनाव कानून के तहत पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने वालों के लिए कम से कम 500 समर्थकों के एक समूह द्वारा नामांकन अनिवार्य है। स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी 40 या अधिक क्षेत्रों से समर्थन के कम 3 लाख हस्ताक्षर जुटाने की आवश्यकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।